arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि।
यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन और कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इन राज्यों में एकता का अभाव था और परस्पर फूट थी। इन राज्यों का पारस्परिक संघर्ष ही इनके पतन का कारण बना। मगध में विशाल नंद साम्राज्य स्थापित था। और अब बात सिकंदर की। सिकंदर 336 ईस्वी पूर्व में शक्तिशाली मकदूनिया साम्राज्य का शासक बना। सिकंदर फिलिप महान का पुत्र था। वो मात्र 19 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। वो विश्व प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर योग्य सेनापति, दूरदर्शी एवं शक्तिशाली शासक था। वो ईरान के हकमनी साम्राज्य एवं भारत को विजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सिकंदर के भारत आक्रमण के उद्देश्य। पहला, विश्व विजय के स्वप्न को साकार करना। सिकंदर में साम्राज्य विस्तार की तीव्र महत्वाकांक्षा थी। सिकंदर को अपनी अदम्य शक्ति पर दृढ़ विश्वास था और वह विश्व विजय के स्वप्न को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा, भारत की आर्थिक संपन्नता का आकर्षण। सिकंदर का आकर्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़े यूरोप की ओर नहीं था, इसलिए वो ईरान व भारत को विजित करना चाहता था जो आर्थिक दृष्टि से समर्थ थे। तीसरा, सागर की समस्या को हल करना। यूनान के भूगोल वेत्ताओं एवं व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करने का निश्चय सिकंदर ने किया। स्ट्रेवो का कथन है कि कैस्पियन सागर और काला सागर के मार्ग से यूरोप को भारतीय माल भेजने की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में आमू सरिता एक कड़ी के समान है। चौथा, सिकंदर को निरंतर प्राप्त हो रही सफलता से प्रोत्साहन। सिकंदर संपूर्ण यूनान को जीतने के पश्चात संपूर्ण एशिया माइनर, भूमध्य सागरों के प्रदेश, मिस्र, ईरान के हकमनी साम्राज्य, बैक्ट्रिया, समरकंद पर अधिकार करके भारत विजय का स्वप्न देखने लगा। और अब बात सिकंदर के आक्रमण की। सिकंदर ने 327 ईस्वी पूर्व काबुल घाटी पर अधिकार करके अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया। एक का नेतृत्व वो स्वयं कर रहा था और दूसरी सेना का नेतृत्व दो सेनापतियों के पास था। पहला, अस्सप विजय। सिकंदर ने अस्सप जाति पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, यद्यपि अस्सप जाति वीरतापूर्वक लड़ी। दूसरा, नीसा विजय। सिकंदर ने सीमांत क्षेत्र में स्थित पहाड़ी जाति नीसा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इस जाति ने सिकंदर को अमूल्य उपहार भेंट में दिए। तीसरा, अश्वकायनों पर अधिकार। इस शक्तिशाली राज्य के शासक ने सिकंदर के विरुद्ध दृढ़ता से युद्ध किया, परंतु विजय सिकंदर की ही हुई। चौथा, तक्षशिला। सिकंदर सिंधु नदी को पार कर 326 ईस्वी पूर्व तक्षशिला पहुंचा। यहां के शासक राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और सैनिक सहायता के लिए सिकंदर को 5,000 सैनिक दिए। आम्भी की इस नीति का कारण ये था कि उसकी पड़ोसी राज्य कैकई प्रदेश से शत्रुता थी और वह वहां के राजा पोरस को नीचा दिखाना चाहता था। पांचवा, पोरस से युद्ध। झेलम और चिनाब नदियों के बीच पुरु का राज्य था। पुरु के राजा पोरस के पास एक शक्तिशाली सेना थी जिसमें 50,000 पैदल, 3,000 घुड़सवार, 1,000 रथ और 130 हाथी थे। वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी। सिकंदर के पास दूसरी ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सिकंदर ने 17 मील ऊपर जाकर एक सुरक्षित स्थान से नदी को पार किया। पोरस को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने अपने पुत्र को सेना देकर भेजा, परंतु तब तक सिकंदर की बाकी सेना भी नदी पार कर गई। करी के मैदान में सिकंदर और पोरस की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पोरस ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध किया, परंतु सिकंदर की जीत हुई। इस युद्ध में 12,000 सैनिक मारे गए और 9,000 बंदी बनाए गए। पोरस को जब सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व के साथ उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस के इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया और व्यास नदी तक के जो भी प्रदेश उसने जीते थे उन सब का शासक भी पोरस को बना दिया। छठा, सिकंदर का व्यास नदी तक अधिकार। पोरस को विजित करने के पश्चात सिकंदर ने ग्लोग निकाय और कठ जातियों को पराजित किया। उन लड़ाकू और वीर जातियों का राज्य व्यास नदी तक था। इस प्रकार सिकंदर का अधिकार व्यास नदी तक हो गया। सिकंदर की भारत से वापसी के कारण। सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर था, परंतु सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। विवश होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। पहला कारण, यूनानी सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार। सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। यूनानी लेखकों का कहना है कि सिकंदर की सेना अत्यधिक थक चुकी थी। सैनिकों को अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था, वे वापस अपने घर जाना चाहते थे। दूसरा कारण, व्यास नदी के आगे शक्तिशाली मगध राज्य। सिकंदर के सैनिकों का इनकार करने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि व्यास नदी के दूसरी ओर मगध का शक्तिशाली राज्य था, जिसके पास एक विशाल सुव्यवस्थित शक्तिशाली सेना थी। इसलिए सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया होगा। विजित प्रदेशों की शासन व्यवस्था। सिकंदर ने वापस लौटने के पहले विशाल दरबार का आयोजन किया और 3 घोषणाएं की। व्यास और झेलम नदी के मध्य का भाग पोरस को दे दिया और सिंधु एवं झेलम नदी के बीच के भाग आम्भी को दे दिए और सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र सेनापति फिलिप्स को दे दिए। सिकंदर की सेना ने 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी से अपने देश के लिए प्रस्थान किया। सिकंदर की सेना उसी मार्ग से वापस लौटी जिस मार्ग से सिकंदर आया था। सिकंदर की भारत से वापसी की यात्रा भी सरल नहीं थी। उसे मार्ग में शिवी, मालवा, क्षुद्रक, मैंसी कैनी आदि जातियों के साथ लड़ना पड़ा। सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। नियारकस जल सेनापति को जहाजी बेड़े के 7 समुद्री मार्ग से वापस जाने के लिए कहा और उसने स्वयं स्थल मार्ग से मकरान के किनारे से अपने देश की ओर चलना प्रारंभ किया। सिकंदर की मृत्यु। बेबीलोन में सिकंदर को तीव्र ज्वर आ गया। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की अचानक बेबीलोन में मृत्यु हो गई। उस समय सिकंदर की आयु मात्र 32 वर्ष थी। इस प्रकार अत्यधिक पराक्रमी वीर, कुशल योद्धा एवं दूरदर्शी मकदूनिया के शासक का अंत हो गया। उसका विश्व विजय का स्वप्न साकार न हो सका। सिकंदर की सफलता के कारण। निस्संदेह सिकंदर एवं उसकी सेना अत्यधिक पराक्रमी और शक्तिशाली थी। सिकंदर की विजय और भारतीयों की पराजय के कई प्रमुख कारण थे जो इस प्रकार हैं। पहला, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए शक्तिशाली सेना होते हुए भी भारतीय राज्य निरंतर सिकंदर की सेना के सामने हारते गए। राजनीतिक एकता न होने के कारण सिकंदर को भारतीय राजाओं को हराना सरल हो गया। दूसरा, राज्यों में परस्पर शत्रुता। उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते थे। तक्षशिला के राजा आम्भी ने कैकेय के राजा पोरस को नीचा दिखाने के लिए ही सिकंदर को भारत अभियान के लिए आमंत्रित किया। पोरस के साथ युद्ध में भी राजा आम्भी ने सिकंदर को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, जिससे सिकंदर के लिए भारतीय राज्यों को जीतना आसान हो गया। भारतीय राज्यों की उदासीनता। जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया तो प्रत्येक राज्य पृथक रूप से युद्ध लड़ता रहा, परंतु सभी भारतीय राज्यों ने एक होकर संगठित रूप से उसका सामना नहीं किया। पूर्वी भारत में शक्तिशाली मगध साम्राज्य के शासक धनानंद ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि वह मूक दर्शक बना देखता रहा। चौथा, सिकंदर का योग्य नेतृत्व। सिकंदर संसार के महान योद्धाओं में एक था। ऐसे अदम्य साहसी व्यक्ति विश्व में बहुत कम है जिन्होंने विश्व विजय का स्वप्न देखा और उसे पूरा करने का प्रयत्न भी किया। सिकंदर के पास एक शक्तिशाली, प्रशिक्षित एवं समस्त आधुनिक अस्त्र शस्त्र से पूर्ण सेना थी और वह स्वयं कुशल संगठनकर्ता एवं योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाला शासक था। यूनानियों की विजय का कारण सिकंदर का नेतृत्व था, जो विश्व इतिहास में सबसे अदम्य साहसी सेनापति था। और अन्य कारण ये थे कि सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध के दौरान अत्यधिक वर्षा होने के कारण पोरस को हानि उठानी पड़ी। युद्ध स्थल पर पोरस की सेना के रथ के पहिए कीचड़ में फंस गए। धनुर्धारी सैनिक वर्षा के कारण तेज गति से बाण नहीं चला पाए। पोरस की हस्ती सेना यानी हाथी सेना ने अपने ही पैदल सैनिकों को रौंद दिया। ये कुछ आकस्मिक कारण हैं जिनके कारण सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा। वह आंधी की तरह भारत में आया और तूफान की तरह भारत से चला गया। कुछ विद्वान तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं और कुछ विद्वान बिल्कुल महत्व नहीं देते, परंतु सत्यता इन दोनों विचारों के मध्य में स्थित है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक एकता का उदय। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को जीतकर स्पष्ट कर दिया कि विदेशी शक्ति का सामना करने के लिए राजनीतिक एकता का होना कितना महत्वपूर्ण है। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राज्यों में सैन्य संगठन की भावना प्रबल हुई। भारतीय राज्यों में अब राजनीतिक एकता और सैन्य शक्ति को संगठित करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गई। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्य सरल। सिकंदर के आक्रमण का एक प्रभाव यह हुआ कि पंजाब की छोटी छोटी रियासतें इतनी शक्तिहीन हो गई कि चंद्रगुप्त के लिए उन्हें जीतना सरल हो गया। साथ ही सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। तीसरा, ऐतिहासिक प्रभाव। इसके अंतर्गत तिथि क्रम की जानकारी हुई। सिकंदर के आक्रमण के पहले प्राचीन इतिहास को जानने में अत्यधिक कठिनाई होती थी, क्योंकि कौन सी घटना किस समय घटित हुई इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण इतिहासकारों के पास नहीं थे। सिकंदर के आक्रमण की तिथि 326 ईस्वी निश्चित होने से भारत के क्रमागत इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली। 326 ईस्वी पूर्व की तिथि ने तिथिक्रम की कई उलझनों को सुलझा दिया। ऐतिहासिक प्रभाव के अंतर्गत इतिहास के निर्माण में सहायता भी मिली। सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक और इतिहासकार भारत आए। उन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। इनसे हमें पंजाब और सिंध की तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। यूनानी लेखकों ने जो लेखबद्ध किया उससे प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिली। चौथा, व्यापारिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण ने भारत और पश्चिमी देशों के मध्य स्थलीय और जलीय मार्ग खोल दिए। यूनानी सेनाएं पश्चिम एशिया तथा ईरान को पार करती हुई भारत पहुंची थी। इस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान होते हुए एशिया माइनर एवं पूर्वी भूमध्य सागर के किनारे बसे बंदरगाहों से उत्तर पश्चिमी भारत तक अनेक व्यापारिक मार्ग खोल दिए। पांचवा, यूनानी उपनिवेश। सिकंदर ने एशिया में कई यूनानी उपनिवेश बैक्ट्रिया, निकाय, हिंदुकुश में सिकंदरिया आदि स्थापित किए। ये बस्तियां यूनानियों के व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ यूनानियों की सैनिक छावनियां भी थीं। इन बस्तियों के यूनानी जीवन का सामान्य प्रभाव अपने सीमित क्षेत्र में भारत पर पड़ता रहा। छठवां, सांस्कृतिक प्रभाव। यूनानी और भारतीय संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आईं। यूनानियों ने भारतीयों को ज्योतिष एवं कला के क्षेत्र में प्रभावित किया। यूनानियों ने भी भारत में ब्राह्मणों, दार्शनिकों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन पर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रभाव पड़ा। सातवां, मुद्रा। भारतीयों ने मुद्रा निर्माण कला में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। अभी तक भारत की मुद्राएं बेडौल और लेख विहीन थी, परंतु यूनानी परंपराओं के प्रभाव स्वरूप भारतीय मुद्राएं लिपिबद्ध और सुडौल बनने लगी।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।